नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में ये 7.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज 2022-23 को आधार वर्ष मानकर वार्षिक तथा त्रैमासिक अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की। इससे पहले 2011-12 को आधार वर्ष मानकर श्रृंखला जारी की जाती थी। मंत्रालय ने कहा कि लगातार 3 वित्त वर्षों में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ प्रदर्शन में विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत रहा है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत कुछ ही वर्ष में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
लगातार 3 वर्षों तक 7% से अधिक की जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था के संभावित जीडीपी के 7% या उसके आसपास रहने के हमारे अनुमान की पुष्टि करती है। कोविड काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर गैर मुद्रास्फीति विस्तार अन्य देशों के प्रदर्शन की तुलना में कायम रहा है। ये सभी देश भी बढ़ते सार्वजनिक ऋण और कम वृद्धि दर की समस्या से जूझ रहे हैं।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दिसंबर में समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022-23 के नए आधार वर्ष के अनुसार 7.8% रही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर प्रस्तुत करना है, जिसके लिए आधार वर्ष संशोधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल किया है और व्यापार को सुगम बनाया। इससे प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश में तेज गति से सुधार हो रहा है। विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में श्री मोदी ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में देश की कृषि, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस समझौते में सभी संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
ये डील हमारे हितों में थी, हमारे सभी सेंसिटिव इश्यूज, किसानों के, डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरमैन के, एमएसएमई के, विश्वकर्मा के, हमारे हथकरघा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डील करी गई थी।
श्री गोयल ने इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अभद्र व्यवहार और विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। बाद में आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने लिखा कि देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरना रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि इस उड़ान ने उन्हें राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में केरल में राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों के विस्तार और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की यात्रा पर आज मुंबई पहुंचे। श्री कार्नी के पदभार ग्रहण करने के बाद ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री मुंबई में 2 दिन रहेंगे। श्री कार्नी भारत और कनाडा के हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। उनकी बैठकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग और वित्तीय विशेषज्ञ, शिक्षक और भारत स्थित कनाडा पेंशन फंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 1 मार्च को श्री कार्नी नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री कार्नी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता 2 मार्च को होगी। इंग्लैंड के साथ T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 3 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है। कल कोलंबो में शाम 7 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत का अंतिम सुपर 8 मैच रविवार को वेस्टइंडीज के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।